नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने कहा, भारत सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संसद सर्वोच्च है और निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान के विषय वस्तु के अंतिम निर्धारक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की यात्रा केवल एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में राहत अभियान जोरों पर। मौसम विभाग ने बिहार के 31 जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर श्री मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने दीर्घकालिक और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है। श्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने में दोनों देशों के साझा हितों पर जोर दिया। उन्होंने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से जुड़ने की उत्सुकता व्यक्त की। श्री मोदी ने प्रवासी समुदाय को एक जीवंत सेतु कहा जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को मजबूत करता है। अरब न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने सऊदी अरब को एक विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक सहयोगी बताया तथा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व और दृष्टिकोण 2030 पहल की प्रशंसा की। उन्होंने ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, हरित हाइड्रोजन और प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के रणनीतिक महत्व को भी रेखांकित किया। ब्यौरा हमारे पश्चिम एशिया संवाददाता से।
भारत का सऊदी अरब को निर्यात 11.56 अमेरिकन डॉलर है जबकि आयात 31.42 तक पहुंचा। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित घनिष्ठ और मित्रवत संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी की जद्दा यात्रा से कई नए समझौतों की उम्मीद है जो क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेंगे। ये यात्रा भारतीय और सऊदी नेतृत्व के लिए गाजा की स्थिति और इसराइल हमास संघर्ष को समाप्त करने का प्रयासों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। चर्चाओं के केंद्र में व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रवासी समुदाय, संस्कृति और क्षेत्रीय सहयोग होंगे। एक प्रमुख ध्यान प्रस्तावित इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर होगा। इस कॉरिडोर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। सऊदी अरब के लिए ये उनकी अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा निर्यात से परे विविधता देने के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। आइए भारत के विदेश सचिव को इस पर सुने।
We are attempting to give more substance to the partnership. The opening of defense procurement is one major area.
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर जद्दा में भारतीय प्रवासी समुदाय ने अत्यधिक उत्साह और गर्व व्यक्त किया है।
Hi, my name is Manhar Musafir. As a person who has been born and brought up here in Saudi Arabia, I'm really excited for Prime Minister Narendra Modi's visit, and I really hope this brings about more cultural, foreign trade. And more technical advancements among both the countries, and it deepens the already strong bonds.
Hi, I am Selena Musafir. Last 4 decades, I am here. This is the first opportunity for our Prime Minister Modi ji. Really excited.
Vinod Kumar, Akashwani News, Jeddah.
भारत की यात्रा पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने परिवार के साथ आज जयपुर के भव्य ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किले में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
श्री वेंस अपने परिवार के साथ आज सुबह करीब 9 बजे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पहुंचे। वेंस परिवार के स्वागत के लिए राजस्थान के पारंपरिक कच्ची घोड़ी, घूमर और कालबेलिया लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति में वेंस परिवार को राजस्थान की जीवंत संस्कृति की झलक देखने को मिली। श्री वेंस आज दोपहर जयपुर में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के भविष्य पर बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश मीणा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
बच्चा हो रहा है बड़ा, 6 महीने होने को आए, मन में हैं कई प्रश्न, तो आज हमसे सुनिए उपाय। जन्म के 6 माह बाद बच्चे को हल्का भोजन खिलाएं, पोषण का ध्यान रखकर भविष्य को मजबूत बनाएं। अंडा हो या मांस मछली, पसंद का ले साथ। पीस कर खिलाएं सब्जियां तो बन जाएगी बात। स्तनपान भी रहेगा जारी, मन में कोई शंका न लाएं। कोई समस्या लगे तो नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाएं। स्वस्थ रहेगा तन तो मजबूत होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
ये आकाशवाणी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनने का सफर एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत मिशन समावेशी, टिकाऊ और नवाचार आधारित विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आज अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि ये भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक प्रासंगिकता का संकेत है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में किए गए कुछ काम उल्लेखनीय हैं और इसका एक उदाहरण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी सफलता है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत बदल रहा है और भारतीय महिलाएं भी बदल रही हैं। इससे पहले श्रीमती सीतारामन ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस कोरियन और उनकी टीम से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संविधान की विषय वस्तु निर्धारित करने में निर्वाचित प्रतिनिधि ही अंतिम निर्धारक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि संसद सर्वोच्च है और संविधान में संसद से ऊपर किसी की कल्पना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि संविधान लोगों के लिए है और ये देश के प्रत्येक व्यक्ति जितना ही सर्वोच्च है।
कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल एंड इट्स रिपोजिटरी ऑफ सेफगार्डिंग इट इज दैट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दे आर द अल्टीमेट मास्टर्स एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट विल बी। देयर इज नो विजुअलाइजेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अथॉरिटी अबव पार्लियामेंट। Parliament is supreme, and that being the situation, let me tell you, it is as supreme as every individual in the country.
सर्वोच्च न्यायालय के 2 विरोधाभासी बयानों का हवाला देते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और केशवानंद भारती मामले में उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संसद भवन में चल रही है। 39 सदस्य समिति में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। पहले सत्र में समिति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉ बीएस चौहान के साथ बातचीत करेगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि ये राष्ट्रीय हित में है और इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में बड़ा इजाफा होगा और जो असुविधा होती है इनडायरेक्ट नुकसान होता है, चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम को हो, बच्चों को हो, चाहे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट हो। अगेन एंड अगेन एक साल में 5-6 इलेक्शन होते हैं और चाहे गवर्नेंस का हो और चाहे लॉजिस्टिक का हो, सारी चीजें हम देखें तो करीब 1.5% जीडीपी का साइमल्टेनियस इलेक्शन से देश को फायदा होगा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि समाज के अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त किए बिना वास्तविक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर चर्चा 2025 को संबोधित करते हुए डॉ कुमार ने ये बात कही।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसे ही समाज की कल्पना की थी कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को जब रहने के लिए मकान मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, अस्वस्थ होने पर उसको दवाइयां मिल जाए, उसके बच्चों को शिक्षा के अच्छे प्रबंध मिल जाए, तभी सही मायने में सामाजिक न्याय के विकास की अवधारणा पूरी होती है।
भारत ने दूरसंचार विभाग में संयुक्त वायरलेस सलाहकार एम रेवती को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू में रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया है। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उनकी उम्मीदवारी देश के वसुधैव कुटुम्बकम के दृष्टिकोण और समावेशी डिजिटल विकास के लिए इसके प्रयास को दर्शाती है, जिससे विकासशील देशों को लाभ होगा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में राहत अभियान जोरों पर है। इस क्षेत्र में 1486 बिजली ट्रांसफार्मर फिर से बहाल कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सभी 1762 बिजली ट्रांसफार्मरों में बिजली आपूर्ति बहाल की जा रही है, जबकि शेष 276 पर कार्य जारी है। डॉ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कल तक आंशिक रूप से बहाल हो जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आज घटनास्थल का दौरा किया। हाल ही में रामबन जिले में तेज हवाओं और कई भूस्खलन के कारण लोगों की जान गई और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। 1969 में यूनेस्को शिखर सम्मेलन में सुझाव के बाद पहली बार 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। एक रिपोर्ट।
असम बाधम बध्यतो मानवानाम यस्य उद्वतः प्रवतः समं बहु नाना वीर्या औषधीर्या विभर्ति पृथ्वी नः प्रथताम राध्यताम नः। पृथ्वी दिवस का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और धरती की रक्षा के लिए प्रयासों को प्रेरित करना है। ये लोगों को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और स्थिरता के बारे में जागरूक करता है और स्वच्छता तथा पौधारोपण जैसे प्रयासों को संगठित करता है। ये दिन सामुदायिक सहयोग और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देता है। इस वर्ष का विषय व्यक्तियों, समूहों और सरकारों से वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को 3 गुना करने का आग्रह करता है, जो अक्षय ऊर्जा को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दे रहा है। ये अभियान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और स्थायी न्यायसंगत तथा समावेशी ऊर्जा भविष्य में निवेश करने के महत्व को रेखांकित करता है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पृथ्वी जीवन का पोषण करती है और विकास तथा उद्भव के लिए आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड के 4 वर्ष बाद 30 जून से फिर शुरू होने जा रही है। ये यात्रा उत्तराखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के संयुक्त निरीक्षण में आयोजित होगी। भारतीय वायुसेना के द्वारा बिहार एयरशो कार्यक्रम में वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने आज पटना में मनमोहक हवाई करतब और शानदार एयरशो से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में वायुसेना के सूर्य किरण विमानों के प्रदर्शन और करतब शामिल हैं। 9 हॉक लड़ाकू विमानों ने भी हैरतअंगेज करतब और हवाई कलाबाजी का प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के कारण बिहार के 31 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 2 दिन में दिन के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी आज लगातार 6ठे सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 194 अंक बढ़कर 79,602 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 53 अंक की वृद्धि के साथ 24,178 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से लखनऊ में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने कहा भारत सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संसद सर्वोच्च है और निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान की विषय वस्तु के अंतिम निर्धारक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की यात्रा केवल एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में राहत अभियान जोरों पर। मौसम विभाग ने बिहार के 31 जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।